इसके बाद आयत 41 में हज़रत अय्यूब का जिक्र है। आप देख रहे हैं कि सूरत अल-अंबिया की तरह सूरत स्वाद भी सारे ये अंबिया का थोड़ा थोड़ा जिक्र है, उनके दुख बीमारियां हमें बताया जा रहा है। मुखलिस और मुखलस बनने के लिए कभी कभी बीमारियों से गुजरना पड़ता है, कभी कभी बेटों की गर्दन पे छुरी रखनी पड़ती है। ये रास्ते हैं, बस अल्लाह ने आपको मुझे जन्नत के रास्ते पर डालना है, जैसे भी डाल दे। जिस तरह हज़रत इस्माईल की एड़ियों से जमजम का चश्मा निकला था, इसी तरह जब अय्यूब अलैहिस्सलाम की सेहत का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने इनकी एड़ियों से एक चश्मा निकाला, जिसके पानी से अल्लाह की तौफीक से इनकी बीमारी ख़त्म हो गई। जी, एड़ियाँ रगड़नी पड़ती हैं अल्लाह से कुछ लेने के लिए। फिर आयत 45 में इब्राहीम, इसहाक, याकूब अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये लोग हाथों से भी काम करते थे, दिमाग से भी सोचते थे। यानी क्या पता चला कि फिज़िकल वर्क भी करो और मेंटल वर्क भी करो। और अल्लाह ताला आयत 46 में बयान करते हैं कि इनको एक ख़ास सिफत की बिना पर चुना था, और वो थी आखरत के घर की याद। इसको क्या कहते हैं? इन्ना खलसनाहुम बिखालिसतिन ज़िक्रद्दार। इनके दिलों को आखरत की याद ने पकड़ा हुआ था, दिन रात याद करते थे। आप देखिए ना, जिससे प्यार होता है बंदा उसको याद करता है, या जिससे डर होता है उसको याद करता है कि वो आ ना जाए, वो पूछ ना ले। अंबिया कराम को हर वक्त फिक्र थी तो ज़िक्रद्दार, मेरा आखरत का घर कैसा होगा, मेरे आखरत के घर में क्या होगा और क्या नहीं होगा। हम दुनिया के घरों को रोते रहते हैं, कितने लोगों की नमाजें बर्बाद हो जाती हैं सिर्फ दुनिया के घरों के काम धंधों में। घर का काम इबादत है, पर नमाज छोड़ के तो नहीं। आप एक रोटी सालन से काम चला सकते थे, आपने 6 सालन क्यों बनाए? आप इतना क्यों थक गए कि आपकी फजर की नमाज चली गई? आप इतनी देर तक दावत क्यों चलाते रहे कि आपके लिए डेफिनेट था कि आप फजर पे नहीं उठेंगे? तो याद रखिए कि आखिरत के घर को याद रखना दुनिया के घर के कामों को मैनेज करवा देता है। आप में से कोई अपने मुशाहदे से भी बता दे, डॉक्टर बनने में क्या एज हो जाती है अमूमन? 25 साल की, 22 साल? किस उम्र की लड़की अमूमन डॉक्टर बन जाती है? जी, 24 साल। चलें 24 का एवरेज बना लें। 24 साल तक पढ़कर सिर्फ एक फील्ड के मास्टर आप हुए, ऐसे ही है ना? फिर आपको अल्लाह ने एक हुनर दिया, तो आखरत के लिए क्या बनाया आपने? मैंने 24 साल, कितने लोग हैं जो लगा सकते हैं इस कुरान के लिए, इस हदीस के लिए? नहीं लगाते, माजरत है, रिवाज ही नहीं है, फैशन नहीं। ये सिर्फ उस वक्त लगेंगे जब मेडिकल प्रोफेशन और कुरान प्रोफेशन साथ चलेगा। ये जनरेशन चल पड़े ना इस तरह के कामों पे, ख्वाब है ये मेरा। पता नहीं आपको तो इतना मुमकिन लगेगा, मुझे नहीं नामुमकिन लगता। जब तक हमारे पाकिस्तान के स्कूल के सिस्टम में प्रेप से लेकर मास्टर्स और प्रेप से लेके मेडिकल और प्रेप से लेके जो भी आपने बनना है, साइमल्टेनियसली उधर वो भी पढ़िए, ये भी पढ़िए, वो भी पढ़िए, ये भी पढ़िए, आप जितने बड़े डॉक्टर बनते जाएं उतने बड़े आप अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह से डरने वाले और इल्म वाले और फकीह और हाफिज बनते जाएं, आपको यकीन करेंगे ये दुनिया आपको सलाम करेगी, आपकी दुनिया कदमों में घूमेगी, पूरी दुनिया आपके पास आएगी कि आओ हमारे पास, हमें ऐसे लोग चाहिए। ये तो बेचारे आप जैसे लोग, दो कश्तियों के सवार, तरस सकते हैं मुझे आप, आपसे मुराद आज के यूथ से। माँ बाप ने कहा बचपन से, बेटा बड़े होके क्या बनोगे, हमसे भी लोग पूछते थे, और हम जुमला पूरा हुए पहले क्या कहते थे? डॉक्टर। और एंड पे सारे मरीज बन जाते हैं, घुटने गोडे गिट्टे लेकर। थोड़े ही को 5% डॉक्टर बनते होंगे, बाकी तो मरीज ही बनते हैं। तो याद रखिए, अगर आपने दुनिया को 25 साल दे दिए और पता नहीं फिर उससे कुछ लेना कि नहीं लेना। शादी होती है, माँ बाप पहले इंतज़ार कर रहे होते हैं बच्ची ने इतना पढ़ लिया अब शादी करें, तो शादी हो गई शुरू तो फिर बच्चों की लाइन शुरू हो गई, तो बच्चे एक के बाद दूसरे। चंद दिन पहले एक सिस्टर मुझे मिली, मुझे याद आ गया उनको देखते ही, कि जब उनके बेटे की मंगनी हुई थी ना तो बड़ी खुशी खुशी मेरे पास आई, कहा मुझे बड़ी अच्छी बहू मिल गई, मैंने जैसी सोची थी वैसी मिल गई है। मैंने कहा कैसी? तो खुद भी माशाल्लाह दीनी मिजाज रखती हैं, कहती पढ़ी हुई, कुरान कोर्स भी किया हुआ, उसकी तजवीद भी बड़ी अच्छी है। तो मेरी यही दुआ थी, मुझे अल्लाह ऐसी बहू दे जो दीन के काम करेगी, माशाल्लाह। वो परसों फिर मिल गई, 2-3 साल हो गए इस बात को, मुझे वो बात उनकी याद आ गई कि माशाल्लाह अब इनके घर में तो एक पूरी जामिया खुल चुकी होगी। मैंने कहा आपकी बहू अब क्या कर रही हैं? कहती दूसरे बच्चे के आने की तैयारी। ये मिला, दूसरा बच्चा आता रहे कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बात समझिए, हम रियलिस्टिकली ना तो दीन की तालीम जो ली होती है उससे और दुनिया की तालीम से फ़ायदा नहीं लेते। इसको गोल बना लीजिए, ये करना है, इसके साथ जो चलेगा उसको भी चलाएंगे, नहीं चलता खुदा हाफिज़ अगले साल, अगली ज़िंदगी, अगली दुनिया। दिस इज़ मोस्टली वॉन्टेड थिंग कि एक दफ़ा आपको खुद तो बताओ कि हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है। ना दीजिए दूसरों को, आप में से हर एक को टीचर नहीं बनना, ये याद रख, यानी मजहबी आलिम नहीं बनना, आप में से किसी को आलमा की डिग्री नहीं लेनी, मुफ्तिया नहीं बनना, लेकिन कम अज कम अपने दीन को तो सीखना ना, जिसको पंजाबी में कहते हैं अपने जोगे तो हो जाए। फिर रमज़ान में फ़ोन कर कर के पूछते हैं वो ये हो गया मेरा रोज़ा है कि नहीं, और मैं हज पे जा रही हूँ, यानी इतने सवाल आते हैं लोगों के, मैंने हज पे जाना है मैं ये कर लूँ, तो भाई हज पे जाने से इसका क्या तल्लक है, बाल डाई कर लूँ, हज पे जाना है तो भाई हज से आकर भी अगर डाई करने जायज़ है तो हज पे भी डाई जायज़ है, और अगर आप हज नहीं कर सकती, मिसाल है बाल डाई करके, तो आप नमाज भी नहीं पढ़ सकती। ये बेचारी उम्मत है हमारी, बिलीव में उम्मत है, जो मेरे जैसा जिधर लगाता है लोग चल पड़ते हैं, कोई कहता है जायज़ है, आप कहते हैं जायज़ है ये काम, दूसरा आकर कहता है खबरदार हराम है, तो हमारे दिलों में डाउट आ जाता है। सबसे बंदे के अंदर सुकून गहरा कब आता है? आई एम ऑन माई राइट वे। खाना पकाते हैं कब? खाना अच्छा पकाते हैं आप? 100% यकीन है कैसे पकाना है, कितना पानी, कितना नमक, कितनी चीनी। इसके बरक्स एक बिल्कुल न्यू कमर जो बच्ची नई नई खाना पकाने सीखे, वो डाउट याद कीजिए, डर डर के तो वो चमची पकड़ती हैं, ज़्यादा ना डाल जाए, नाप नाप के डालती हैं। डाउट होता है जब बंदा कच्चा पक्का काम करे, दीन के काम में पुरसकून है। आपकी ज़िंदगी अगर सेचूरेटेड है, समझ लीजिए ठीक काम करें। नया ड्राइवर हाथ कांपते हैं, तो जो सीख जाते हैं वो साथ मज़े से बातें भी कर रहे हैं, खा रहे हैं, फ़ोन भी सुन रहे हैं और ड्राइविंग कर रहे हैं, उनका दिमाग चलता है। तो क्या आखरत हमारी इस काबिल नहीं है? क्या मेरे आपके लिए ज़िक्रदार इतनी अहम नहीं जितनी हज़रत अय्यूब के लिए थी, हज़रत इब्राहिम और इस्माइल के लिए थी? तो यहाँ एक बात नोट कीजिए कि आखरत की याद इतना खालिस कर देती है। ये जुमला तो मेरा दिक्र है, 3 दफ़ा आप ग्रुप्स में पढ़ें, आखरत की याद इतना खालिस कर देती है कि इंसान हर तासुब से निकल आता है, हर नफे नुकसान और हर जमा तफरीक से निकल आता है। हर मामला करने से पहले अपनी ज़िंदगी में ये असूल बनाएं कि कोई मामला सामने आ जाए, फौरन अपने आप से पूछें इस फैसले का मेरी आखरत पर क्या असर पड़ेगा, मेरे दीन को इससे क्या फ़ायदा होगा। अगर दीन को फ़ायदा हो रहा है तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं, फिर ज़्यादा ना सोचें कि करूं कि ना करूं, मुश्किल है कि आसान, नहीं। अब अगला जुमला फिर हाईलाइट करें, हम में से बहुत सारे लोग नेकी से सिर्फ इसलिए पीछे हट जाते हैं कि वो सोचने लग जाते हैं। और पंजाबी में एक जुमला सुना वह, सोची पिया तो बंदा ही गया। सोचना नहीं है नेकी के, नेकी का काम बगैर सोचे करते हैं। इब्राहिम ने बेटे की गर्दन पे छुरी चलाई, पीछे पढ़ के आए ना इसी बारे में, सोचते हैं इब्राहिम इस्माइल की गर्दन पे छुरी चलाऊं कि ना चलाऊं, तो कभी चलती छुरी? 10 दफ़ा तो हाथ कांपता, हाय अपना बेटा, हाय ये मर गया तो मेरे बुढ़ापे का क्या होगा, और ये हो गया वो हो गया, अल्लाह का हुक्म है। नहीं नहीं अल्लाह कुछ नहीं कह रहा, अल्लाह कुछ और कह रहा है, मुझे ख्वाब नहीं समझ आ रहा। और रियल नहीं था, वही आई नहीं थी, फरिश्ता नहीं आया था नबी के पास कि ये करो, ख्वाब था, जस्ट लाइक एक ख्वाब। लेकिन जो मुखलिस है ना, वो ख्वाबों के इशारे भी समझ जाते हैं, और अल्लाह माफ़ करे जिन्होंने नहीं मानना होता, उनको मुँह से कह दो, वो कहते नहीं ये मुझे तो समझ ही नहीं आई बात क्या। तो फिर क्या है, बहुत सारे लोग नेकी से सिर्फ इसलिए पीछे हट जाते हैं कि वो सोचने लग जाते हैं, नेकियों के लिए ना सोचें। तो इसका मतलब ये है कि इखलास का दर्जा कम हो रहा है और वो मसलहत पसंद, देखिए जो लफ्ज़ है ना मसलहत, वो भी इसी में से निकला, यानी वो मसलहत पसंद हो जाते हैं, कैसे सुलह की तरफ आते हैं, यानी कॉम्प्रोमाइजिंग होने लगते हैं, कोई बीच का रास्ता निकाल लें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें भी खालिस करे, चुन ले, और अल्लाह ताला तो इस ज़िंदगी में جسے اچھے طریقے سے چننا چاہتا ہے چن لیتا ہے. ہر وہ چیز جو میرے اور جنت کے بیچ میں ہے اللہ اس کو نکال دے. اے اللہ ہر وہ چیز جو مجھے تیرے دیدار سے محروم کرتی ہے اس کو نکال دے. مجھے ان لوگوں میں رہنا ہے جو ہر وقت تیرے پاس ہیں, اور مجھے وہ جنت الفردوس چاہیے جس کی چھت تیرا عرش ہے. میں تجھ سے دور نہیں رہ سکتی. اے اللہ تو مجھ سے بھی ہر وہ کام کروا لے جو مجھے خالص کر کے تیرا دیدار اور جنت کے قابل کر دے. آمین. لیکن یاد رکھیے اس میں بہت سی مشکلات بھی آئیں گی, بڑے بڑے امتحان بھی آئیں گے. اے اللہ پھر مجھے اس پہ جما دے. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 50 سے 54 جنت کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں بتا رہے ہیں کہ انہیں نہیں لینا چاہتے. تمہیں مشکل ہو رہا ہے خالص ہونا, عبادت تمہیں مشکل لگ رہی ہے, دین سیکھنا تمہیں مشکل لگ رہا ہے, اور اپنا تزکیہ کر کے دکھی ہو رہے ہو. تو دیکھو تو صحیح رب نے تمہارے لیے تیار کیا کیا ہے. لوگ تو اس 4 دن کی دنیا کے لیے اپنے آپ کو اتنا کھپاتے ہیں, آدھی آدھی رات کو اٹھ اٹھ کر کام کرنے جاتے ہیں. کبھی سوچو رب نے تمہارے لیے جو تیار کیا ہے وہ تم لینا نہیں چاہتے. آپ دیکھیے اگر آپ ان کا ترجمہ جب یاد کریں گے نا, یہ ساری آیتوں کا, آیت نمبر 45 سے آگے تقریباً آیت نمبر 54 تک, تو آپ کے منہ میں پانی آنے لگے گا کہ اللہ نے جنتیوں کے لیے کیا کچھ تیار کیا ہے. پڑھ کے سناؤں ترجمہ ان کا آپ کو؟ یہ دیکھیے عربی قرآن ہے. کل انشاءاللہ آپ بھی ایسے ہی پڑھیں گے. مجھے کوئی سوچا نہیں تھا کہ آپ کو پڑھاؤں گی, لیکن دل چاہ رہا ہے آپ سے شیئر کر دوں. سناؤں؟ چلیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انا اخلصناہم بخالصۃ الذکر الدار. بے شک ہم نے ان کو خالص کر لیا, خالص کرنا آخرت کے گھر کی یاد کے لیے. وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ. وہ بے شک ہمارے پاس چنے ہوئے منتخب شدہ لوگ تھے, سلیکٹڈ ونز, یہ ہیں پوزیشن ہولڈرز. وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ. اور ذکر کیجئے اسماعیل اور یسع اور ذی الکفل کا, وہ سارے ہی چنے ہوئے لوگ تھے. کہیں اللہ میں بھی چن, ضد کریں اللہ سے کہ اللہ مجھے بھی چن, میں نے چناؤ کرانا ہے, میری بھی پوزیشن آئے, مجھے بھی آگے جانا ہے, مجھے بڑے درجوں پہ پہنچنا ہے. حاذا ذکرن, جواب آ گیا, یہ ہے وہ راستہ, یہ ذکر, یہ قرآن. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنُ مَآبٍ. بے شک البتہ متقین کے لیے بڑا پیارا ٹھکانہ ہے. جنات یتنن, ہمیشگی کی جنتیں. مفتحت لہم الابواب, کھلے ہوئے ہوں گے ان کے لیے دروازے. ہمارے ایک بڑا پیار کا محاورہ بولتے ہیں, کسی کو فون کریں ہم آپ کے گھر آ جائیں, تو آپ کہتے ہیں آپ کے لیے دل کے دروازے کھلے ہیں, اجازت لینے کی کیا ضرورت. ہوتے ہیں نا کچھ لوگ, کوئی کہتا ہے پلکے جمائے ہوئے ہیں, کبھی کوئی کچھ کوئی کچھ, ہے نا محاورے. یہ محاورہ نہیں, یہ حقیقت ہے کہ جنت میں جا کر دروازے نہیں کھٹکھٹانے پڑیں گے اور شرمندہ ہونا ہے کہ غلط ٹائم پہ آ گئے ہیں, گھر والا دروازے نہیں کھول رہا. بڑا دلچسپ سا ایک واقعہ یاد آ گیا, کسی دوسرے شہر ٹرپ تھا, تو اسٹوڈنٹس بڑے ایموشنل ہوتے ہیں. پتہ تھا کہ آ رہے ہیں, جن کے گھر جانا تھا تو وہ خوشی کا اظہار کرتے کراتے. جب قریب تھے پہنچنے تو ایک میسج ان کا آیا, تو ایک شعر لکھا ہوا تھا, عجیب و غریب سا تھا, ابھی اندر نہ نہ ہم پلکے بچھا لیں, ہم دودھ بچھا دیں, یہ کر دیں وہ کر دیں. شعر تھا, آپ کہیں ہوگا اگر بعد میں صحیح سنانا ہوا. ہم وہاں ان کے گھر پہنچ گئے تو میں گاڑی سے نہ نکلوں, میں نے کال کی, میں نے کہا جو کہا ہے پہلے وہ کرو پھر اندر آئیں گے. تو محبت ہے نا, اللہ پیار دکھا رہا ہے آپ کو, کبھی سوچیں تو صحیح. ہمارا تو حال یہ کہ اللہ بلا رہا ہے اور ہم کہتے ہیں ابھی نہیں آنا, ابھی مصروف, ابھی تو بڑے کام ہے مجھے. ہاں چلے, کھلے ہوئے دروازے تھے تو کیا ہوا. متقین فیہا یدون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب. وہ تکیے لگائے ہوئے ہوں گے ان میں. سوچئے کوچس, بہت پیارا ریزورٹ ہوتا ہے نا, تو ایسی فرشی مسندیں ہوتی ہیں, اور عربوں کا کلچر تھا دیواروں کے ساتھ ساتھ بیٹھنے والے صوفے ہوتے ہیں. اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہاں تکیوں پہ بیٹھے ہوں گے, سامنے ان کے مزے مزے کے میوے ہوں گے اور پینے کی چیزیں ہوں گی, لگژریس قسم کی محفل. जिसको बैठक भी कहते हैं, यानी आप जहन में लेना गौ तकी हैं और अंदर मेवे खाने लगे हुए, अल्लाह कहते हैं वहाँ ये सब होगा। व इन दहम कासिरात तरफियत रौब, ये मर्दों को खुश करने के लिए, कि उनके पास झुकी हुई नजरों वाली हम उम्र बीवियां होंगी। और कहा जाएगा हाजमात वदून अलियो मिल हिसाब, ये है जो तुमसे वादा दिया जाता था हिसाब के दिन का। यानी ऐसे है कि देखो मैं कहता था ना ये मिलेगा, मिल गया ना आज। इन हाजल रिस्क नामा लहू मिन नफाद, ये है हमारा रिस्क और है नहीं इसका कम होना, ये नहीं अब कभी ख़त्म होगा। और अगली आयतें ना सुनिए, सारी जहन्नम की है। तो अल्लाह ताला कह रहा है फिर भी नहीं आओगे। ज़रा सा मैं आपको चार जुमले सुनाऊँ ना कि हाय दुनिया में फ़लाँ मुल्क पे एक ऐसी जगह है, बड़ा मज़ा आता है, तो आप कहेंगे हमें भी ले जाए, हम भी जाने को तैयार हैं। चाहे वहाँ जा के सफ़र में इतने थके हों, वहाँ जाके वोमिट कर रहे हों, सारा मज़ा ही सफ़र का ख़राब हो जाए। अल्लाह आपसे मुझसे क्या कुछ कहते हैं और हम सोचों में पड़े रहते हैं। सो सैड। वो कहते हैं ना तू मेरा नहीं बनता, ना बन, अपना तो बन। यकीन करें हम अपने भी नहीं, और जब हम अपने बनना चाहते हैं ना तो दूसरे हमें डराते हैं, सोच लो और ये कर लो। तो कभी नेकी करते वक्त किसी से ना पूछें, और अपने नफ्स से तो बिल्कुल ना पूछें। इसके बाद अब आगे आयत 56 से अगली आयतों में सरकशियों का अंजाम है। देखिए या तो सर झुकाएंगे मती, तो या सरकश, ये कश होता है, ये सिगरेट के क्या करते हैं लोग, ये सरकशी पता क्या है, ऐसे नो मैं नहीं करूंगी, सरकश सर को खींचना। अल्लाह कहते हैं सर को आगे झुकाओ, हम पीछे झुकाते हैं, अकड़ते हैं, नहीं मानते तो ना मानो, अल्लाह का क्या जाता है। अल्लाह कह रहे देख लो अब जो इंजाम होगा वो बड़ा ही बुरा होगा। हम इन आयात पर अपने लिए मुहासबे का नुक्ता बना सकते हैं जो इंतहाई ज़ाती होगा। करें क्या, अकेले बैठें और सोचें कि मेरी ज़िंदगी में कौन कौन ऐसा है और क्या क्या चीज़ ऐसी है जिसको देखकर मैं जहन्नम की तरफ भाग रही हूँ। मदद करूँ इसमें मैं आपकी, क्या क्या चीज़ें, मसलन दोस्तों में कोई ऐसी दोस्त तो नहीं जो मुझे गलत तरफ माइल कर रही है, कपड़ों में, खानों में, मेरे पहनने ओढ़ने में, मेरे बाहर जाने में, मेरे आने में, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जिसकी वजह से मैं जहन्नम की तरफ भाग रही हूँ। और कल क़यामत के दिन मैं इनको कहूँगा कि तुम थे कि जिनकी वजह से मैं आग में आया, यानी जिन दोस्तों या रिश्तेदारों या करीबियों की वजह से हम गलत काम करते हैं ना, क़यामत के दिन हम उनको ये कह रहे होंगे तुम ना होते ना तो मैं जन्नत में जाती। इनमें से कुछ जानदार चीज़ें होंगी आपके सामने, कुछ बेजान होंगी, कुछ किरदार होंगे, कुछ फर्जी चीज़ें होंगी, और कुछ ऐसे होंगे जिनको आप सुनते रहते हैं और फिर वो कहेंगे हमने कहा था कि तुम हमें सुनो। तो आप कोशिश करें इन चीज़ों को अपने आप से दूर करने की ताकि जहन्नुम की आग से बच सके। और इस सूरत के आखिरी आयात से हमें ये सबक मिलता है कि शैतान के फंदों से अगर बचना चाहते हैं तो अपने अंदर बोलिए अखलास पैदा करें। और दूसरी बात यह कि जितना अखलास आता है उतना ही नेकियों की तरफ बढ़ना और जन्नत के रास्तों की तरफ जाना आसान हो जाता है। अगर आपको नेकी करनी आसान लग रही है ना तो खुश हों, ज़ेरे लब मुस्कुराएं कि इसका तो मुखलिस बन रही हूँ। और अगर मुश्किल लग रहा है नेकी का रास्ता और गुनाह की तरफ जाना भाग दौड़ मज़ा है, बड़े ख़तरे की फिर बात है। तो ये सूरत हमें क्या देकर गई, मुखलिस बनना है तो फिर अल्लाह के फ़ैसलों को मानना पड़ेगा, अल्लाह की बताई हुई ज़िंदगी को कबूल करना पड़ेगा। और इसके बाद अब कुछ हिस्सा सूरत ज़ुमर का है। ज़ुमर कहते हैं रूप को, ग्रो। कभी आपने 23 अगस्त या 14 अगस्त को परेड देखी है टीवी पे, सिंध का काफ़िला, पंजाब का काफ़िला, नेवी का काफ़िला, वो जो ग्रुप्स में बन के आते हैं ना उसको ज़ुमर कहते हैं। अब ये मैदान हशर में होगा, ये हम पढ़ेंगे अगले पारे के अंदर सूरत के एंड पे, लेकिन यहाँ आइए देखते हैं कि ये क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अजीज़िल हकीम। किताब का नाजिल करना है उस अल्लाह की तरफ जो गालिब भी है और हिकमत वाला भी है। इस सूरत के शुरू में खलूस की बात की गई है कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हो जाओ। अगला जुमला हाईलाइट करें, अल्लाह को अधूरी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। अल्लाह खालिस चीज़ें पसंद करता है। जैसे खालिस चीज़ें बाज़ार में महंगी मिलती हैं, तो कल क़यामत के दिन क्या होगा? बंदों की कीमत होगी और हमारे आमाल तोले जाएंगे और हमारा इखलास तोला जाएगा। और इस तरह आमाल उस वक्त वज़न रखेंगे जब इनमें इखलास होगा। इसकी बुनियाद पर हम अपनी इबादत को देखें, अपने रोज़े, नमाज और दूसरी इबादत को देख लें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इखलास दे दे। अल्लाह को अपने बंदों से कितना प्यार है कि सूरत में बार बार एक लफ्ज़ आएगा। आपको पता है क्या है वो लफ्ज़? या इबादी, या इबादी का लफ्ज़ बहुत आएगा इस सूरत में। आयत 18 से पता चलता है कि बात कब दिल में जाती है, जब आप भी लिख ले, जब गौर से सुनते हैं। अगर दिमाग किसी और ही चीज़ में हो तो बात सुनी अनसुनी हो जाती है। तो बात को गौर से सुनना ये मुखलस होने का या मुखलस होने का पहला कदम होता है। यानी वो दीन को सुनकर, कुरान को सुनकर खुश नहीं हो रहे थे, फिर वो बातें जो अमल में आ सकती हैं इनको अमल में लाते हैं। आयत 22 से अगली चंद आयात में अल्लाह ताला इस किताब के कुछ आदाब और कुछ असरात दिखाते हैं जो खुले दिलों वालों के होने चाहिए। और हम सब कुरान पाक पढ़ने के बाद ख़ुद ही अपना मुहासबा कर सकते हैं। इस पारे के आखिर में अल्लाह ताला ने मुखलस बनने का बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया है। असल में अल्लाह ताला ने आयत 29 में एक मिसाल दी है जो एक ग़ुलाम शख्स और एक आज़ाद की है। आप कह लीजिए कि मुशरिक और मवाहिद की मिसाल है। जो बंदा एक रब का हो जाता है ना, ऐसा कि जिसने एक बहुत बड़े आका की ग़ुलामी में अपने आप को दे दिया, और वो आका इससे बड़ा प्यार करता है और बार बार कहता है मेरे बंदे मेरे बंदे। जो एक रब का बनेगा फिर वो कई बदखुल्क लोगों का बनने से बच जाएगा। जब हम भाग भाग कर दुनिया की तरफ जाते हैं तो ये दुनिया जब हमें अपनी तरफ लेती है तो असल में हम ताना ही सुन रहे होते हैं। एक को खुश किया नहीं तो दूसरा नाराज़, इसको नाराज़ दूसरे को नाराज़ किया या तीसरा नाराज़, ऐसे ही होता है। एक मुशरिक का हाल ये है और दुनियादार का भी यही हाल है। करके देख लें, जिसको भी खुश करना चाहें वो नहीं होगा। आज है खुश, कल नहीं। आप एक दिन काम छोड़ें, देखिए ज़रा सासों के मूड कैसे बनते हैं। आप एक वक्त सिर्फ खाना ना पकाएं, आज रात का खाना कोई ना पकाए जाके, पर मेरे ऊपर ना लीजिएगा, कल भेजेंगे नहीं आपको। एक दिन खाना ना पकाएं, और घर में आते हैं लोग हस्बे आदत के खाने पके होंगे, और आते ही कह दें मियाँ साहब ज़रा बाजार से ही ले आए, और बच्चों से कह दें वो फ्रिज में जो 2 दिन की दाल पड़ी है खा लो, मामा आप तो कभी कुछ पकाती नहीं हैं, और मियाँ साहब तो पता नहीं क्या कुछ बोल देंगे। एक दिन अपना काम छोड़ें, आपको अपनी कीमत मिल जाएगी। लेकिन अल्लाह ऐसा नहीं है। लेकिन एक रब ऐसा है कि इखलास के साथ आप इसके बन जाएं। एक दफ़ा आप रब के बन गए, आपने यकीन दिला दिया कि अल्लाह मैं तेरी बंदी और तू मेरा आका। इसके बाद क्या हुआ? इखलास का एक बहुत बड़ा समर है, और वो क्या कि अगर कभी मुखलसीन से गलती हो जाए, कोई ख़ता हो जाए, कोई नाफरमानी हो जाए, तो अल्लाह ताला फरिश्तों को इसके गुनाह नहीं लिखने देते। ये लिख लें जुमला, पूरी ज़िम्मेदारी से ये जुमला, मुखलसीन के गुनाहों को अल्लाह लिखने नहीं देते। क्या कहते होंगे? ये सिर्फ समझाने के लिए तमसील है। कहते हैं मुझे पता है मेरा बंदा है, कोई मजबूरी होगी इसलिए नहीं किया इसने काम, तुम लिख दो, और साथ ही लिख दो कि अल्लाह ने इसे माफ़ कर दिया। फिर अल्लाह इसे इसके छोटे छोटे गुनाहों पर नहीं पकड़ेगा, फिर अल्लाह इस बंदे को शर्मिंदा नहीं करेगा जो सारी ज़िंदगी इसके नाम की दुहाई देता रहा। अल्लाह क्यों उसको शर्मिंदा करे? अल्लाह को पता है ये मेरे काम करता था, ये मेरा नाम लेता था, ये सारी ज़िंदगी लोगों को मेरी तरफ बुलाता था। इबादत में कमियां रहेंगी, लोग इससे नाराज़ रहेंगे, लेकिन अल्लाह कहेगा ये मेरा बंदा है, इसने साबित कर दिया कि ये मेरा बंदा है, ये मेरी जन्नत है, मैं तुम्हें इसमें ले जाऊंगा। जो दुनिया में ख़ुद को पाक करेगा अल्लाह ताला इसको माफ़ करेगा। ऐसे बंदे के साथ अल्लाह का बड़ा प्यार का मामला होता है। आप में से किसी को ये बात समझ ना आई हो तो एक मिसाल दूं। आप देखिए कि घर के कुछ मुलाज़मीन ऐसे होंगे जो आपके पैदा होने से पहले के थे घर में। है किसी के घर में कुमासी, को बाबा, चाचा, माली? हमारे घरों में था एक बाबा, वो इतना पुराना मुलाज़िम हो जाता है कि घर का फ़र्द बन जाता है, ट्रस्ट। ना ये गलत करेगा, ना करने देगा, ना हराम खाएगा, ना खाने देगा। आप पूरे घर की चाबियां उसको दे के चले जाते हैं 15 दिन रहने के लिए कि बाबा जी चाबी संभालो, हम जा रहे हैं। वो चौकीदार है, आपको पता है वो किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाएगा। ऐसे ही है ना। इसके बरक्स एक नया बंदा, उस बाबे से बहुत ज़्यादा ताकतवर, मूछों पे बल देता हुआ। वो बाबा समझे पहला ड्राइवर था, आप बेटियों को उसके साथ भेज दें, बच्चों को भेज दें, खैर है बाबा जी कोई खयानत नहीं करेंगे, जिस काम भेजा वही करके आएंगे। अब एक खट्टा कट्टा ड्राइवर आपने रखा, उसमें ताकत भी बड़ी, काम बड़ा, ट्रस्ट किस पे ज़्यादा होगा, पुराने पे कि नए पे? मिसाल है कि गाड़ी ठुक गई, कोई भी गलत काम, कोई मिसहैप हो गया, किसकी बात पे ज़्यादा यकीन करेंगे, पुराने के नए? बाबा जी साबित कर चुके हैं कि वो मुखलिस हैं। ये नए बेचारे को भी मुखलिस बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। असल चीज़ ट्रस्ट है। शौहर बीवी का ताल्लुक 10, 20, 25, 30, 40 साल तक किस धागे से बंधा रहता है आपको पता? ट्रस्ट होता है। ये मेरी ही बीवी है, बस मेरी ही रहेगी, ये मेरे साथ मुखलिस है। और बीवी को भी मियाँ पे ये ट्रस्ट होता है। ज़िंदगी में जब इंसानों को इंसानों का ट्रस्ट मिल जाता है, आप हो गई गलती, आप पहले बाबा जी से गलती हो गई, बस आप उनको गाड़ी देकर भेजते हैं और वो आके कहते हैं कि जी, मसलन कोई भी मिसाल ले लीजिए, पैसे लेके आ रहे थे कहीं से, रास्ते में चोरों ने रोक लिया, मेरे से वो थैला ले लिया, 10,000 रुपये ले गए चोर। अब बाबा जी से एक नुकसान हुआ, आपको यकीन है ना कि ऐसे ही हुआ होगा? अब ये तो नहीं कहेंगे बाबा जी ने झूठ बोला, और वो बेचारे परेशान हैं। अब कहते हैं बाबा जी कोई बात नहीं, मुझसे भी तो लगनी थी ना, चोरी मुझसे भी हो सकती थी। इसके बरक्स नया बंदा जो भी ज़रा वैसे ही बहुत अभी अपने पर पुर्जे दिखा रहा है, वही आके कहता है जी गाड़ी लग गई और वहाँ 10,000 रुपये मेरे चोरी हो गए, तो आप ट्रस्ट नहीं करेंगे? सबसे ज़्यादा मेहनत जिस काम पे करें ज़िंदगी में, वो अल्लाह का ट्रस्ट ले लें। फिर आपकी मेरी बड़ी कमी है, इतनी कमी है, बंदों को हमारी कमियाँ पता चलें कि हमसे बात ना करें। अल्लाह को सारी पता होती है, अल्लाह फिर हमसे काम करवाता है, अल्लाह फिर हमें इज्जत देता है, अल्लाह हमें फिर मोहब्बत देता है। तो अल्लाह का एक दफ़ा ट्रस्ट ले, ये है इखलास। वो कहते हैं ना एक शेर भी है कि तौहीद तो ये है कि हशर में खुदा ये कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा है मेरे लिए। ये मैं था जिसकी वजह से ये हर वक्त दूसरों से उलझा रहता था, हम तो अपने बच्चों से नहीं उलझ पाते, अल्लाह की बना। तो बहरहाल इतना ही काफ़ी है। एक और आखिरी बात पारे के एंड पे है। पारे के आखिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुखलसीन को भी मौत आनी है और दुनियादारों को भी मरना है। मौत तो सबको आएगी, लेकिन अगला मरहला बड़ा मुश्किल है। क़यामत के रोज़ सब अपना अपना मुकदमा पेश करेंगे। इस पारे के आखिर में हम सब के लिए ये पैगाम है कि हम किसी की खामियों को टटोलने की बजाय इसकी खूबियों को देखें, अपने लिए दुआ करें, या अल्लाह कल जब क़यामत के दिन तेरे सामने आकर अपने मुकदमे पेश करें, तो इस वक्त अपनी ही नज़रों में झूठे न बने। ये है क़यामत के दिन, आयत देख लीजिए आखिरी, इन्नक मैयितुन व इन्नहुम मैयितुन। बेशक आपको भी, किसको कहा जा रहा है? नबी सल्लम को। आपको भी मौत आनी है, यानी आप भी मरेंगे, और बेशक ये भी मरेंगे। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति इंदा रब्बिकुम तख्तसिमून। और फिर उस दिन क़यामत के दिन तुम सब, यानी जिनकी बात हो रही है, रब के सामने झगड़े कर रहे होगे। तो नबी सल्लम के दुनिया से जाने को अल्लाह ने यहाँ तस्करा किया, इससे अल्लाह के नबी की कोई गुस्ताखी नहीं हो गई। तो असल बात क्या है कि जब दिल की दुनिया बदलती है ना, तो फिर बहुत तब्दीलियाँ आती हैं। अल्लाह से ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आपको मुझे अंदर बाहर से खालिस कर दे। तो ये था पारा नंबर 23।